ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहां जय जयकार हो रही, भोजन पाओ जय जयकार करे, वैसा भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, और सब कहे जय हो कबीर जी की, वह कबीर की बड़ी दया कर उसने बड़ा भोजन करवाया, और साथ में वो बंजारे एक मोहर दे और एक दोहर दे विदाई इस केस में भोजन खाते ही, वो नारे गुण गाते जा। अब सिकंदर लोधी ने देखा भाई ये क्या, ये भंडारा कौन कर रहा है कि ये कबीर की तरफ से चिट्ठी गई थी, कबीर दुलाहे की तरफ से, वो कर रहा है, वो कहाँ है कि उसका तो पता नहीं, पर उसका एक मित्र बैठा है सामने टेंट में। सिकंदर लोधी गए वहां, भगवान केशव रूप में बैठे थे, एक दूसरे रूप में, बंजारे के रूप। तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी ने कि कबीर जी कहाँ है, आप कौन हो? परमेश्वर ने यानी केशव रूप में प्रेजेंट परमात्मा ने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का मित्र हूं, मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा, और ये दास उनके आदेश से हाजिर है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि परमात्मा क्यों नहीं आए, कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है? तो उस केशव ने कहा कि उसका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो विश्राम कर रहे हैं अपने घर पे। अब सिकंदर लोधी बडटिया नहीं गया, वहीं पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया कि प्रभु दरवाजा खोलो। तब वो रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो यहां भी आ गए, दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने सोचा वो आगे रोटी खानी है। अब कबीर जी बोले भाई बोलिए मत ना, नाक कुंडी खोलिए और चुप करके मंत्र कर दो, या किसी प्रकार आज का दिन पूरा हो, रात को भाग जाएंगे अपन, चल पड़ेंगे कहीं दूर जाकर बसेंगे। अब ये लीला कर रहे थे भगवान। कहते हैं परमात्मा करे करा वसाइया, मन में डर उठा दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा। अपने को छुपाए रहता है, सबका पालन करता है, अपना नाम नहीं लेत। फिर दोबारा आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, आपका दास आया है सिकंदर लोधी। कबीर जी ने कहा कि राजन, परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि राजन मैं बहुत दुखी कर लिया हूं, यहाँ के जो जितने भी गुरु पीर ब्राह्मण और ये मुसलमानों के पीर हैं, और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर 18 लाख व्यक्ति एकत्रित कर दिए हैं, मेरे पास तो परिवार का भोजन भी नहीं है, पूरा मुश्किल से कपड़ा बुन का काम चला रहा हूं, मुझ गरीब के साथ कैसा जुल्म कर दिया। मैं तो भगवान आज रात होते ही यहां से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इसलिए मैं दरवाजा खोलू नहीं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, अपने इस दास को नहीं, हम मैं जान चुका हूं आपको, और परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो, हे परवरदिगार आपने वहां जय जयकार कर रखी, ऐसे भंडारा लगा दिया और 18 लाख व्यक्ति जीवन लाग रहे, भोजन पा रहे, एक बार आपके दर्शन अभिलाषी हैं, आप दर्शन दीजिए उनको। सभी कह रहे हैं वो ऐसा कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो सेठ महान आत्मा जिसने इतना सुंदर भोजन और इतना जो है ना दान कर दिया हमारे को। तब कबीर जी ने दरवाजा खुलवाया, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत चरणों में और कहा प्रभु एक बार इस हाथी पर बैठकर चलो, दुनिया देखती चल मेरे भगवान को। क्योंकि सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, नीचे उतरा हाथी पर परमात्मा को बैठाया, रविदास जी को बैठाया, स्वयं भी बैठ गया, कबीर जी पर चौंर करने लगा। जो ही कबीर परमेश्वर जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए, कुटिया से आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा, पूरे मेले में चले गए, सब जय जयकार करोगे, ये है कबीर जी, इस पर सिकंदर लोधी चौंर करे, युराजा चौंर कर रहा ना, ये है वो कबीर जी। और सबको 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और 3 रात भोजन कराया है, और सबको प्रत्येक भोजन के बाद ऐसे ही एक दोहर और एक मोहर दे रहे थे। तीसरे दिन जब वो चलने लगे, दोनों रूप में परमात्मा डबल रोल में खड़े हैं, केशव और कबीर रूप में, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा, शेख तकी की तो मासी मर गई जब ने देखा जयकार हो रही भगवान कबीर साहिब की, उस ईर्ष्यालु दुष्ट की, उसके समझ में नहीं आया कि इसे भगवान को छोड़कर तू क्या बकवास कर रहा है। परमात्मा की वाणी में है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। इंसान जब मान बढ़ाई और ईर्षा छोड़ दे तो यू देवता बन जा और भगवान पा सकता है, लेकिन वो छूटती नहीं। इसी रोग से ग्रस्त था शेख तकी, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। अब तीसरे दिन समापन हुआ, जितने भी सतलोक से आए हुए वो आत्माएं थी, पुण्यात्मा हंस आए हुए थे, उन्होंने बंजारे रूप में सारा सामान टेंट इकट्ठा किया और बैलों पर रखा और चलते बने। केशव वहीं खड़ा है, और जब गंगा के अंदर से निकल कर जाना था सभी ने, और गंगा बहुत तेजी से बह रही थी, अब उन सभी ने गंगा से पार होना था, तो गंगा का पानी एक एक फुट रह गया नीचे एकदम, जैसे श्री कृष्ण जी को लेकर के चले थे वासुदेव, उसमें जमुना नीचे उतर गई थी, तो वह गंगा काशी के साथ से बहती है, काशी के पास है, एकदम एक एक फुट रह गई और सारे बंजारे और बैल पार हो गए। अब कुछ देर के बाद वहां वो परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं का यानी डबल रोल केशव केशव जी और साथ में सिकंदर लोधी और शेख तकी और कुछ व्यक्ति बहुत से काशी के खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, हे बंजारा, आपके बैल चले गए, आप जाओ, दूर चले जाएंगे, फिर आप उनको उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। उसी समय क्या देखा कि इधर देखा है कि कहां वो बैल, 9 लाख बैल और उनके साथ लाखों की संख्या में वो बंजारे, और वो गंगा पार करके जब देखा एक भी ना दिखा, कोई भी विजिबल नहीं था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहां गए सारे, अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वो गए सतलोक में। और उसी समय जो केशव रूप में खड़े थे परमात्मा दूसरे रूप में, वो केशव वाला स्वरूप कबीर परमेश्वर जी के शरीर में समावेश कर गया, अकेले कबीर जी रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा कहते हैं, अब शेख तकी ने बोला इसे ऐसे भंडारे में सो कर दूं, यु के नारे कर दिए, आप राजा हो, आप पता नहीं कितना कुछ कर दो, इसने क्या किया है, तो डुप्लीकेट सा काम कर। अब परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा। महोछा कहते हैं जो किसी मजबूरी में किसी के बताने पर थोड़ा बहुत धर्म पूर्ण करना पड़ता है, उसकी मजबूरी सी होती है, और जग जोनार होती है जो खुले दिल को विशेष खुशी की उपलब्धि में करता है। किसी का पुत्र हो जाता था, वो कोई बहुत बड़ा भंडारा करता था, वो खुशी से होता था। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोई कहे यग जोनार करी है, खुले दिल से भाई भंडारा किया। कोई कहे महोछा, ये तो महोछा सा किया है, जैसे कोई मृत्यु पकड़ते हैं मजबूरी में, और कहते बड़े बड़ाई दिया करेंगे गाड़ी का डेउछा। कहते महान आत्मा ही दूसरे की बड़ाई कर सकता है, और नीच आत्मा तो कितना अच्छा आदमी है उसकी बुराई ही करता है, गालियां निकालता है। ऐसी सती थी उस शेख तकी की। तो यहां इससे ये सिद्ध हुआ है, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि उस समय मेरे घर पर 18 लाख अतिथि आगे, वो भी 3 दिन की टेक दी उन्होंने लाठी, 3 दिन के जोड़े रख दिए, 3 दिन का आदेश है भोजन करा। वो 18 लाख अतिथियों को वो मोहन भोजन कराया परमात्मा ने, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। ये हमें संदेश दे रहे हैं परमात्मा उदाहरण देकर के, तुम यदि मेरे तरह ऐसे जैसे मैं लीला करके जा रहा हूं, एक नेक नागरिक की तरह रहो, बुराई सब त्याग दो, अन्य पूजाएं मत करो, जो साधना जो भक्ति परमात्मा ने बताई, जो स्वयं लीला करके दिखाते थे, वैसे तुमको क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे तुम करते रहोगे तो उस समय आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी आपके कोई भी आवश्यकता होगी वो सारी पूरी होगी, और ऐसी भी कोई आपत्ति आई तो नो टालूंगा, जैसे वो भंडारा करके दिखा दिया। तो परमात्मा कहते हैं तुमने अगर कोई मांगना भी है मेरे से, ऐसे मांगो और ऐसी साधना कीजिए, आपके भाग में ना होगा तो दूंगा, लेकिन दूंगा इतना जितना तुम्हें हानि ना कर जावे। पुणात्माओं इससे आगे और के मांगेंगे, आई आप टिटल जा, 2 दिन की गुजरान जगत में जड़े बिराणी आगरे, अब क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती, आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी। राजाओं को कहते हैं क्यों हो गया हाथी द्वार पर बांध के, तू एक अपनी महिमा दिखा रहा है, और कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, ये माया जिसके पीछे सारा जीवन नष्ट कर देते हो, लाखों पाप कमाते हो, ये आपके साथ नहीं जा सकती। आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य धर्म और ये भक्ति साथ जाएगी। धर्म तो 10 के नहीं 10 के 3 लोक, और खैर आयत में खैर है कीजिए आत्म पोक है। जो सत साधना नहीं करते और जो साधना बिल्कुल नहीं करते उनके बारे में कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जब तुम यहां से शरीर त्याग कर जाओगे, जो भक्ति नहीं करते केवल माया जोड़न में लग रहे हो, रावण की तरह कहते हैं सारी सोने की लंका थी, 1 रति कंचन 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका, वो और भक्ति सत बनी नहीं, सही साधना नहीं की, साधना नहीं की वो भी हानि में, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते वो भी ऐसे होंगे जैसे जुए में हार जाने के बाद जुआरी पछताता है, आए दास हो गया कुछ भी नहीं बचा। कहते हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी, इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सरदर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालाकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं, और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष की जानकारी है, 3 प्रभुओं की, जैसा आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को सुनाया था ये सत्य ज्ञान। ये 3 पुरुष हैं, 3 परमात्मा हैं, 3 स्वामी हैं। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक एक विवरण दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान पूछने को कहा गया है और वो तत्वदर्शी संत फिर परमात्म तत्व की जानकारी देगा, तत्व ज्ञान सुनाओगा, तो उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, और उस परमात्मा की जानकारी भी इन 15वें अध्याय में दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ मूल ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा गया है ऐसा जानो, और इसकी ये विभाग जो जानता है पत्तों सहित, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, उस उल्टे लटके में संसार रूपी वृक्ष की मूल से लेकर शाखाओं और तने तना डार और पत्तों तक की जानकारी जो रखता है, जो संत जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96-96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट प्रमाण है कि वो कबीर देव नाम का परमात्मा, कबीर देव का हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां विराजमान है, और वहां से वो गति करके चल के आते हैं अपने रूप को सरल करके, क्योंकि सतलोक में उस अमर धाम में सनातन परम धाम में वो परमात्मा बहुत तेजो में शरीर युक्त है, उनके एक रोमकूप की रोशनी, एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य मिला दे और इतने ही चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के परमेश्वर के एक रोमकूप के समान नहीं है, इतना तेजो में शरीर है उस भगवान का। यदि वो परमेश्वर अपने एज इट इज बॉडी में यहां आ जाएं, उस जो के तो शरीर प्रकाश युक्त शरीर से यहां प्रकट हो जाएं, तो हम उनको देख नहीं सकते, सबकी आंखें बंद हो जा, चरम दृष्टि उनको सहन नहीं कर सकती उस प्रकाश को, इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को हल्का करके सरल करके यहां प्रकट होते हैं, अच्छी आत्मा को पुण्य आत्मा को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और फिर वो परमात्मा सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं, वो परमात्मा फिर अपने तत्व ज्ञान को, अपने उस यथार्थ ज्ञान को अपने मुख कमल से बोलते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है, उसमें सभी साधक कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में ही लगा रहता है, कोई अहिंसावादी व्रतों को ही करता है। तो इस प्रकार के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जैसे आज सुबह दिन में भी बताया था, ये जानकारी दी थी आपको, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और आप जिन कभी सुना नहीं, इसलिए बार बार आपको ये आवर्ती करके आपके कंठस्थ कराया जा रहा है, क्योंकि हमने अज्ञान को भी ऐसे ही सुना है, हजारों बार सुन रखा है, फिर फाइनल हो गया, वो गलत ज्ञान भी हमने ठीक लगने लग गया। अब सत्य ज्ञान को भी इतना ही सुनना पड़ेगा, तभी ये हमें स्वीकार्य होगा और हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। वो परमात्मा अपने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही प्रदान करने के लिए आते हैं। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्होंने यह गलत अनुवाद कर दिया, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत है, क्योंकि गीताजी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ही अनुवाद किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म बिल्कुल सही है, और ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ब्रह्म का अर्थ भी वेद करते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि वेद तो भगवान का विधान है, संविधान है, उसकी जानकारी है, उसके बारे में महिमा लिखी है, और ब्रह्म भगवान को कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, लेकिन यहाँ सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये अन्य भी अपने आप को यहाँ पर भू बनाए बैठे हैं। तो यहाँ लिखा है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे हैं यज्ञों की जानकारी, और उनको कर्म जान, वो कर्म करते हुए अपना दैनिक कार्य करते हुए उनकी उसका सिमरण अनुष्ठान यानी होता है, और उसको जानकर वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्मणे मुखे कारत है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष के मुखारविंद से उच्चरित वाणी, उसमें विस्तार से कहा। तो उस वाणी में परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा है 15वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 इसका और 16 और 17 में उल्टे लटके हुए संसार विवर्क की जानकारी देते हुए परमेश्वर ने बताया है। अब गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि जो संत, जो व्यक्ति, जो कोई भी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर टहनी तना सब कुछ बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, वो भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। क्या बताया है मालिक ने कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात्रो पसन सार। ये देखिएगा, परमात्मा ने जो बताया है वो देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 इसमें लिखा है, प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और परमात्मा ने एक ही दोहे में यह सभी वर्णन कर दिया। यह है श्रीमद् भगवद गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवाद के गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय पंचदशो अध्याय प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तुम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है ये तो है पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म मूल वाले और अध शाखम नीचे को शाखा वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। यो अविनाशी रचना है उस मालिक की। और छंदासी यस्य प्रणानी जिसके पत्ते वगैरह ये विभाग हैं उसके ऊर्ध्व मूलम अधशाखम ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंद विभाग जड़ तना मोटी डार शाखा और ये पत्ते प्रणानी माने पत्ते और जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बता देता है इसके छंद यानी विभागों को बता देता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार निरंजन सर्व ब्रह्म को कहते हैं सर्व पुरुष को तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तीनों देवा शाखा है और पात्र रूप संसार। परमात्मा ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में बता दिया 15वें अध्याय का पूरा सारांश कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है ये जमीन से जो बाहर दिखाई देता है जो पोर्शन उसको पेड़ बोलते हैं ये सारा एक पेड़ हो गया। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार ये सर्वब्रह्म भी बोलते हैं इसको सर्वपुरुष भी सर्वब्रह्म सर्वपुरुष सर्वब्रह्म भी कहते हैं इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं काल ब्रह्म भी कहते हैं डार भी ये डार है और इसके तीन शाखा हैं इस सर्वब्रह्म के ज्योत निरंजन के ये तीन पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी और ये पात्र रूप संसार ये आगे अन्य प्राणी है समझो ये एक एग्जाम्पल है एक उदाहरण है। और ये जो परमात्मा है पूर्ण ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया कबीर भगवान ने और वही ज्ञान दे दिया इस दास को। तो इस पृथ्वी पर आज तक इस रहस्य को बताने वाले परमेश्वर के अतिरिक्त इस दास के ऊपर कृपा की है कोई नहीं था। अन्य संत जो जिनको ये ज्ञान दिया उन्होंने अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। अन्य महापुरुषों को जो परमात्मा आकर मिले थे उनको भी उन्होंने यही ज्ञान दिया था लेकिन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में उनको लिखवा दिया बोल दिया और उन वाणी को कोई समझ नहीं सका क्योंकि इसको अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो अपनी उनकी महिमा में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है नेक आत्माओं को अच्छी आत्माओं को दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से उसी आधार से अपने लीलावश अपने गुणों के आधार से वो परमात्मा आए कबीर देव जी और यहाँ कलयुग में किन किन को मिले आदरणीय मुरुकदास साहिब जी को आदरणीय धर्मदास साहिब जी को आदरणीय दादू साहिब जी को आदरणीय नानक साहिब जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी वाले जिला दुद्र हरियाणा आदरणीय गीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को आदरणीय नामदेव जी को महाराष्ट्र में जो हुए हैं पुंडरपुर में उन महात्मा को वो परमात्मा के इतिहास भी उनकी महिमा भी उनकी वेद भी उनके गुणगान करते हुए यही बताते हैं, वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है और ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने की है। तो इसे सिद्ध है कि यही भगवान है और उन्होंने आकर के ये ज्ञान बताया, अपने मुखारविंद से बोला, इसलिए सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यथार्थ ज्ञान का है। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस सुखदाई परमात्मा को भूल गए। वो परमात्मा है, परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख देता है दुख नहीं देता, और श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये तीन पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अन्य वो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पुरुष कहो, सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सिंपल में ब्रह्म बोल देते थे, क्योंकि जैसे किसी एक विभाग का, जैसे किसी एक महकमे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जितने भी उसके कार्यालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, वो एक दूसरे से संबोधन करते हैं कि ये काम ये कार्य साहब ने बोला है। वो ये नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने बोला है, उनके लिए अंडरस्टूड होता उनका साहब डिप्टी कमिश्नर या डीसी है। इसी प्रकार कोई एसपी ऑफिस में काम करते हैं तो वो को काम एक कार्य एक दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा करो साहब ने बोला है, उनके लिए अंडरस्टूड है एसपी साहब और उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। तो इसी प्रकार यहां जो 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म जो बोलते थे, ब्रह्म ये यहां का भगवान है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्म मेन प्रभु हुआ। इनके लिए यही सुप्रीम बोझ था, इनका यू हिसाब था। अब परमेश्वर ने आके इसको बताया कि ये सर्वपुरुष है, ये तो नासवान प्रभु है, ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो। और फिर बताया कि अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म बोलते हैं, वो सात शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पदम शंख। और फिर एक परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, कुल का मालिक है, सबका स्वामी है, इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है। ब्रह्म और परब्रह्म पर भी, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष स्वामी है, सबका कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है, वो सबका रचनहार है, सबका वो जड़ रूपी परमात्मा, मूल रूपी भगवान, जिससे सबका धारण पोषण होता है, सबका पालन पोषण वही करता है, वो परमात्मा है। तो इस कारण से यहां ब्रह्म को ब्रह्म बोलने लगे, जैसे डीसी वाले डीसी ऑफिस को वाले उसको साहब बोलते थे, बस अंडरस्टूड है उनका साहब, लेकिन ये सर्वपुरुष है, ये नाशवान साहब है। और इससे जैसे डीसी से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर इन चीफ, उससे ऊपर मंत्री है, मंत्रियों से ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी साहब कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म जो प्रसिद्ध था, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने से केवल ब्रह्म कहकर छोड़ देते थे। और उन ऋषि महर्षि और आध्यात्मिक गुरुओं को आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर मानते रहे, यही मार खा गए। तो दयालु परमात्मा है वो, कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म। हम उस दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के लोक में आ गए। श्रीमद् भगवत गीता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी है, उसको जानने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, बनाया है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की जानकारी है, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उधारते है। सर्पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान है, इनके प्राणी भी इनके जितने इनके अंतर्गत इनके ब्रह्मांडों में सभी वो भी नाशवान है, आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा इति उदारते, उसको परमात्मा कहा जाता है, वास्तव में वो परमात्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा है। अपने आत्मा यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहें? इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है, मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं, किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने, इस आत्मा के ऊपर एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड इसको। अपने स्वार्थवश और जीव को यहां फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। गधे और गाय को एक ही रस्से से बांध दिया टाइट। अब दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, गाय और गधे के। आत्मा गाय है, मन गधा है, इसकी सारी उल्टी नेचर है। आत्मा की नेतर इसके विपरीत है, वो सीधा साधा अपने अच्छे काम करना चाहता है, परमात्मा भक्ति चाहता है। तो पहले तो ये मन सारी बकवाद करवाता है, देखो भोजन कितना सुंदर आहार है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बना दो, पूरी बना ले, कचौड़ी बना ले, सब्जी दही बड़े, किशमिश काजू सेब संतरे, कितने सुंदर आहार है। लेकिन इसने कर्म बिगड़वाने से मतलब है बीड़ी बीड़ी पी पिवागा है, जब बस सीख लेंगे एक दूसरे ने कितना आग लगी सारे के बताया। बीड़ी पीण की चीज है, उक्का पीने की वस्तु है, और ये मांस खाते हैं जीव को मार के, अंडे फोड़ के खाते हैं, अंडे का अंदर से निकला हुआ वो पदार्थ उसको देख के भी उल्टी गिर जा, ऐसा गंध है उसमें, और उसको मुंह का लाकर फोड़ के पी जाते हैं, और तेरा गजब है। तो ये मन सारे कुक्रम करवाता है, शुक्रम नहीं करवाता। और फिर जैसे कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई हत्याएं कर देता है स्वार्थवश पैसे के लालच में, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। अब ये काल क्या कहता है कि मैंने तो एक न्यायाधीश बैठा रखे है और उसको आदेश दे दिया है कि जो जैसे कर्म करे वैसे फल दे दे। अब ये कर्म तो आप गलत करवा देता है और फिर सजा का पात्र प्राणी खुद होता है। तो जिस कारण से यहां कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है, अभी बताया आपके किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का, एक्सीडेंट के दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को कैंसर है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। इस स्थिति को देखकर क्या यहाँ के भगवान को, क्या यहाँ के मालिक को भगवान कह सकते हैं? क्या ये परमात्मा कहने योग्य है? कभी नहीं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, सुख ही सुख दे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभुओं की पहचान बताई। तीन पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, तो ये नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है, ये भी दुखी है। जन्म मृत्यु जहां वहां दुख ही दुख है। फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें के में कि उत्तम पुरुषत्व ने, वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ प्रभु, उत्तम पुरुष, उत्तम माने अच्छा, अच्छा भगवान। तो इसे सिद्ध है कि ऊपर वाले अच्छे नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा। और फिर कहा कि इसको परमात्मा कहा जाता है, इसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारतः, ये परमात्मा कहलाता है। यह लोकतर आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये है वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष लिखा है। अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ सर माने नाशवान, सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, किस ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे ज्योत निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु। अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये फिर नाशवान भी कहे हैं। इनके और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबका सब नाशवान है। अब जैसे, और फिर कहा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रमावि से विवर्ती अवैश्वर, अवै माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो। वास्तव में वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है अविनाशी। अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा, लेकिन यहां डिफाइन किया है गीता ज्ञानदाता ने, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो इस ब्रह्म को दिया था परमात्मा ने वेदों में। वेदों वाला ज्ञान इस काल ने, ब्रह्म ने स्वयं बोलना पड़ा उस मालिक के आदेश से। तो इसमें कहा कि वो है अवै ईश्वर है, अवे माने अविनाशी। अब अक्षर का भी अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये कैसे अविनाशी अक्षर पुरुष कह दिया, इसका यहां थोड़ा सा विस्तार से विवरण देना पड़ेगा। जैसे सर पुरुष यानी ब्रह्म, सर ब्रह्म, इसकी आयु कितनी है? अब एक ब्रह्मा जी की आयु सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। चार युगों की एक चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसका कुल योग सभी वर्षों का 43,20,000 वर्ष होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि होती है, और ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, ऐसे 100 वर्ष की। अब ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष ऐसे बने हुए, और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु अधिक, 4900 वर्ष की, 4900 वर्ष ऐसे बने हुए। और फिर उसके बाद इन तीनों की मृत्यु होती है, और जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु से पहले ही ये सर्पुरुष यानी काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न कर लेता, उसी समय उसको कोमा में रखता है। वर्तमान ब्रह्मा की मृत्यु होते ही उसको ऐसे ही रख देगा कमल के फूल पर, फिर उसके नए सिरे से जीवन शुरू होगा। तो ऐसे जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे जिसकी आयु ब्रह्मा जी से 49 गुना ज्यादा है, यानी 7 गुना तो विष्णु जी की होगी ब्रह्मा से ज्यादा, विष्णु जी से ज्यादा होगी शिव जी की 7 गुना, यानी 49 गुना ब्रह्मा से ज्यादा आयु है शिव जी की, तमोगुण शिव की, काल के पुत्र, ये तीनों ब्रह्म के पुत्र। तो 70,000 बार जब शिव जी की मृत्यु हो लेगी तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ब्रह्म लोक में यो काल रहता है, ब्रह्म रहता है, इसकी भी मृत्यु होगी और दुर्गा की भी मृत्यु होगी। वो युग होगा एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तो ये एक युग होगा किसका, अक्षर पुरुष का। अपुण्यात्मा ऐसे ढंग से आपको समझा देगा ये दास इस ज्ञान को, उंगलियों पर आ जाएगा आपके ये सारा। तो ये एक युग होगा अक्षर पुरुष का, ऐसे 1,000 युग की अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे बने हुए 1,000 युग का दिन इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब देखो पुण्यात्मा इतनी लंबी उम्र है इसकी, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। बताओ, और फिर भी इसकी मृत्यु, अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एति उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे, एति उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर कबीर देव जी सचिदानंद घन ब्रह्म जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब अपनी अमृत वाणी में या उनसे जिनको वो मिलते हैं संतों को, वो संत अपनी अमृत वाणी में अच्छी आत्मा जो होती है वो क्या बताते हैं कि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सतगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से इतनी लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी होगा कोई, उसकी भी मृत्यु होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में यही कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, और वो परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनू देवा शाखा है, ये पात्र संसार। फिर ये कहा कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सौर्य ब्रह्मंडों की रचना की है वो उस वही पूजा के योग्य है, उसकी पूजा करो, नथिंग एल्स, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। तो यहां पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि इसको अक्षर पुरुष इसलिए कहा है कि इसकी उम्र लंबी घनी है। जैसे एक तो सफेद मिट्टी चीनी होती है, जिसको चीनी का बोलते हैं कप, वो तो अंडरस्टूड है, हाथ से छूट गया, पक्के फर्श पर गिर गया, गिरते टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये स्थिति तो समझो सर पुरुष की, ब्रह्म की, और इसके अंतर्गत इतने प्राणी हैं, इनकी इतनी उम्र है, हालांकि हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत लंबी उम्र है इनकी। ब्रह्मा जी का एक दिन, ओए होए, 1,000 चतुर्युग का, एक चतुर्युग में हमारे वर्ष यहाँ के 43,20,000, और फिर 100 वर्ष की उम्र उसकी, उत्तराग्रह, और फिर भी इनकी उस पूर्ण परमात्मा और अन्य उस तुलना से क्या बताते हैं, ये तो ऐसी उम्र है इस ब्रह्म तक की, इसकी सती थी इनकी बॉडी की, समझो ये चीनी का बना हुआ प्लेट होया करें, प्लेट है, कटोरी हो, कप है, और अक्सर पुरुष समझो स्टील की बॉडी है इसकी, ये समझ लो चाय पीने का कप समझ लो। अब वो गिर जा तो टूटे नहीं, जल्दी सी वो खराब हो नहीं क्योंकि स्टील है, लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, इस्पात को भी जंग लगेगा, उसका समय बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको अविनाशी इसको भी कह दिया, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होगा। और अक्सर पुरुष तो उत्तम पुरुष तो अन्य है। अब तीसरी धातु सोना होती है, स्वर्ण गोल्ड। अब उसको ना जर लगे ना कुछ हो, कितने वर्ष रखे रखो, तो ऐसे परमा इन भगवानों की सतीथी से परिचित होने के लिए यदि इसको अक्सर पुरुष कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर पुरुष और अक्सर पुरुष, सर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको अक्सर माने अविनाशी भगवान कह दिया, लेकिन फिर बताया कि इनकी मृत्यु है, इनकी भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके सथूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा मरती नहीं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उद्धारते ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्म ने यानी इस परब्रह्म को, यहां ब्रह्म ने कहा है उस परब्रह्म के, यहां ब्रह्मा का नहीं, इन्होंने उसका अर्थ ब्रह्मा का रखा, गलत किया है, और उसमें चतुर्युग भी नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, उसमें ओनली युग लिखा है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 को दिखाते हैं आप, ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कृत देखो, सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम अह माने दिन, यत माने जो, ब्रह्मणे माने अक्षर पुरुष, यहां ब्रह्मणे का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहां आयु से संबंधित है, इसकी आयु है इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहां नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मणे का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्म ने माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। तो सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु, रात्रि सहस्र युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, ते अहोर विद अहो रात्र विद जना, इसका अर्थ है इन्होंने अनुवाद गलत किया है, इन्होंने यहां लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग, इन्होंने अनुवाद अपने ज्ञान से यहां पर घुसोड़ दिया चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। अक्षर पुरुष की जानकारी है यहां पर ब्रह्म से आगे, और इतनी ही रात्रि, रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है, और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण, यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न चल रहा है कि हम दयालु परमात्मा ने छोड़ के इस काल के लोक में आगे यो दयालु नहीं है, है ये तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और ये ऋषियों के समुदाय झुंड के झुंड हाथ जोड़े खड़े हैं आपके आगे, आपकी स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रों के माध्यम से, वेदों के स्तोत्रों से, और आप मंगल कामना करते हैं, बख्श दो बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन कहता है भगवान कुछ तो आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और कुछ को आप खा रहे हो, वो सब तो आपके मुंह में समा रहे हैं। ये खुद का मैं काल हूं, अर्जुन का तुम तो उनको भी खा रहे हो जो आपकी स्तुति कर रहे हैं। अपने आत्मा, जब तक हम इस काल के इंद्रजाल को नहीं समझाएंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। हम यही इस काल के ही इस भूर भुलैया में इसके ये इस चकाचौंध में यही भूले रहेंगे और जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। परमात्मा के ज्ञान को समझकर फिर परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए आप अपनी सच्ची भक्ति करते रहना, आपको यहाँ के सुख भी सबसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो उतने ही देगा भगवान जितने आपको आवश्यक होंगे। तो ऐसे आप इसका करके देखना भक्ति भगवान सतपुरुष की। तो कहने का भाव यह है कि वो दयालु भगवान है और ये काल भगवान है जहां हम रह रहे हैं। और ये खुद भी कहता मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं काल हूं, मैं परवर्त हुआ हूं। तो यहां कोई भी ऐसी व्यवस्था हमें नहीं लगती जिसके हम परमात्मा को दयालु कह सकें, यहां के मालिक को। हम जिस आधार से ये कह सकें ये भगवान दयालु है, और कोई दयालुता भी करता है तो वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही यहां आता है, हमें विधि बताते हैं और उनके अनुसार हम यहां क्रिया करते हैं, तो इस काल का जो नियम है वो भी स्थिर हो जाता है। काल का नियम है कि जिसकी जितनी आयु निर्धारित है उसकी मृत्यु उस समय निश्चित होगी, और जिसको कोई आपत्ति आनी है उसके प्रारब्ध संस्कार में है तो वो भी उसने भोगनी ही पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से यथार्थ मंत्र का जाप करते हुए मर्यादा में रहोगे, आप जी के ऊपर कोई आपत्ति आपके प्रारब्ध वाली नहीं आएगी। और आपकी मृत्यु होनी हो आपके संस्कार में, वह मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये है दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस काल के आपत्ति वाले जो इसके हथियार हैं, जो इसके नियम हैं, उनको भी स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा, जाम कर देगा। अब यहां कुछ एक भक्त कहते हैं कि भगवान को दयालु कहते हैं या बुरा हाल हाहाकार में चली है, दयालु कैसा हुआ? जिस लोक में ये कष्ट नहीं है वो परमात्मा वहां का मालिक है, और वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मम आस्त्रित यतन्ति, ये ब्रह्म तत्विदु अखिल अध्यात्म च कृष्णम, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षा यतन्ति, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं।